नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादु याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देशभर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान तेजी से गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2500 लोग अभी भी लापता। भारत ने 11 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे जोन साइकिल के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी लालियन ज्वाला चांगते को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत केवल एक औपचारिकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। ये भारत के युवाओं के स्वास्थ्य, खुशी और उज्ज्वल भविष्य के लिए सामूहिक संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत से केवल एक व्यक्ति पर ही दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि पूरे परिवार और समाज को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने नशे से के खिलाफ जागरूकता फैलाने और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए आगे आने वाले लोगों की सराहना की। श्री मोदी ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दे। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी रचनात्मकता को माध्यम के रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। मध्य नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 734 हो गई है। शव बरामद किए जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। आपदा के बाद से लगभग 2500 लोग अभी भी लापता है। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं और सभी 8 प्रभावित जिलों से शव बरामद किए गए हैं। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था स्थापन प्राधिकरण NDRRMA ने बताया कि अब तक चितवन से 259, नवलपारी से पूर्व से 184, नवलपारसी पश्चिम से 82 और गोरखा जिले से 58 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह नुवाकोट से 52, ढांडिंग से 50, तनहू से 36 और रसुआ से 13 शव बरामद किए गए हैं। प्राधिकरण ने बताया कि 85 सुरक्षाकर्मियों और 320 विदेशियों सहित 2498 लोग लापता हैं। बचाव दल ने अब तक प्रभावित जिलों से 8186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक शामिल है। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के लिए नया अलर्ट जारी किया है और नदी किनारे रहने वाले निवासियों से सतर्क रहने को कहा है। NDRRMA ने नदी में बाढ़ का प्रभाव बढ़ने की सूचना दी है। रसुआ जिला प्रशासन ने रसुआ, नुवाकोट और दांडिंग जिलों में भोटे कोसी नदी के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। नेपाल सीमा के पास तिब्बत में आई अचानक बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। चीनी अधिकारियों के अनुसार 546 लोग अब भी लापता है, जिनमें कई भारतीय भी शामिल है। 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ ने ग्यूंगरोंग नेपाल सीमा पर अवर्जन बंदरगाह को अपनी चपेट में ले लिया था। उस समय बड़ी संख्या में लोग तिब्बत में प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने के लिए दोनों ओर इंतजार कर रहे थे। तिब्बत के ग्योरोंग काउंटी में राहत और बचाव अभियान जारी है। चीनी अधिकारियों के अनुसार लापता लोगों में 23 देशों के 261 विदेशी नागरिक भी शामिल है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को सारे 68 टन राहत सामग्री भेजी है और खोज तथा बचाव कार्यों में सहायता के लिए तकनीकी दल, फोरेंसिक विशेषज्ञ और उपकरण भेजे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट में बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान आज नेपाल पहुंचा। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने कल एक बयान में कहा कि भारत ने नुवाकोट जिले के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली क्षेत्र में पनबिजली सुरंगों में खोज और बचाव कार्यों के लिए सुरंग विशेषज्ञों सहित एक विशेष तकनीकी दल और उपकरण भेजे हैं। बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पनबिजली सुरंगों में श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। बचाव कार्य शुरू करने से पहले दल के चिले में और लॉन्गटांग क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया। दूतावास ने कहा कि भारत ने कंबल, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, प्लास्टिक शीट और स्वच्छता किट सहित राहत सामग्री के साथ साथ फोरेंसिक विशेषज्ञ और डीएनए विश्लेषण के लिए उपकरण भी भेजे हैं। इसके अलावा 230 फुट लंबे एक लेन वाले मॉड्यूलर स्टील पुल के लिए उपकरण ले जा रहे हैं। 16 ट्रक वहां पहुंच चुके हैं। नेपाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था बहाल करने के लिए 42 बेली पुलों के निर्माण के लिए सहायता मांगी है। इन पोर्टेबल पुलों को भारी मशीनरी या विशेष उपकरणों के बिना ही जल्दी से असेंबल किया जा सकता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय नागरिक लापता हैं और अन्य देशों की नागरिकता वाले लगभग 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। श्री जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था, ऐसे लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए हैं, वहीं चीन से अभी तक रवाना नहीं हुए। 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाली और चीनी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस विमान से नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए आवश्यक सामग्री और तकनीकी सहायता लाई गई। इससे पहले भारत ने 3 उड़ानों में 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी थी। नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमखंड के ढहने से हिमस्खलन हुआ, जिससे पानी, कीचड़ और मलबा तेजी से बह निकला। बुधवार को इसने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया और मध्य नेपाल में पनबिजली संयंत्रों को बहा ले गया। मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कल लक्षद्वीप के अगति में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उपराष्ट्रपति मिशन रंगीन मछली 2031 के रणनीतिक कार्य योजना का शुभारंभ करेंगे। ये योजना सजावटी मत्स्य पालन के विकास को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडे जोन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित यह कार्यक्रम ब्रिक्स के सहयोग से राष्ट्रीय खेल दिवस का विशेष संस्करण था। संवाददाताओं से बातचीत में डॉ मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। साइकिल चलाने के महत्व का उल्लेख करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि यह व्यायाम का एक उत्कृष्ट रूप है। ये प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है और यातायात जाम की समस्या का एक प्रभावी समाधान है। डॉ मांडविया ने युवाओं के स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम एक घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि फिट इंडिया पहले देश को अधिक स्वस्थ, मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर करेगी। उन्होंने युवाओं से भी आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। मिजोरम के फुटबॉल खिलाड़ी लालियन ज्वाला चांगते को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया है। 29 वर्षीय चांगते हाल ही में मुंबई फुटबॉल क्लब से मोहन बागान में शामिल हुए हैं। उन्होंने कल रात भारतीय फुटबॉल के दिग्गज भाईचुंग भूटिया से यह सम्मान ग्रहण किया। फुटबॉल प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ये पुरस्कार साथ ही खिलाड़ियों के वोटों के आधार पर तय किया जाता है। चांगते ने इससे पहले 2023-24 सीजन के लिए भी ये सम्मान जीता था। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल लू होमा ने चांगते को बधाई दी। वहीं मिजोरम फुटबॉल एसोसिएशन ने इस उपलब्धि के गौरवपूर्ण क्षण बताया और कहा कि ये मिजो फुटबॉलर की अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगा। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान का शुरुआत करेगा। स्मृति मंदना उपकप्तान होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।